मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने एक टॉपिक की पृष्ठभूमि आप सबके सामने प्रस्तुत की थी, फिल्मकार बर्गमैन की एक फिल्म का संदर्भ देते हुए, और उसका संदर्भ था न समझे जाने की पीड़ा। और यह जो पीड़ा थी, यह इनफेक्ट ईसा मसीह की पीड़ा थी। और उसमें कूबर ये कह रहा है कि मेरी पीड़ा तो ईसा मसीह से भी बड़ी पीड़ा है, क्योंकि ईसा मसीह की जो पीड़ा थी सूली पर चढ़ाए जाने की, वो तो कुछ ही घंटों की थी, 6 घंटों की थी ज्यादा से ज्यादा। और मैं तो जीवन भर जो कूबर होने का जो दर्द होता है उसे झेल रहा हूं, तो मेरी पीड़ा तो उनसे कहीं ज्यादा बड़ी पीड़ा थी। लेकिन इनफैक्ट जो हम समझते हैं कि ईसा मसीह को इस बात का दुख था कि अंततः उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, ये उनकी सही पीड़ा नहीं थी। पीड़ा थी कि उन्हें समझा नहीं गया, न समझे जाने की पीड़ा। एक बात फ्रेंड्स मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, और प्लीज आप सब इसे करने की कोशिश करें, बहुत ही सामान्य सी बात है। देखिए, हमारे यहाँ ईश्वर के रूप में, महान व्यक्तित्वों के रूप में बहुत सारे नाम है, हमारे यहाँ भी और विश्व के भी। चलिए, हम सब के बारे में नहीं जान सकते, मैं जीवनियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें जानना ही चाहिए, जिनका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट दुनिया पर पड़ा है। ईसा मसीह उनमें से एक है, मोहम्मद साहब हैं, हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे गुरु नानक देव हैं, इस तरह के जो नाम हैं, उन्होंने जो भी बातें कही उन बातों ने धर्म का रूप ले लिया, जबकि उनकी जो बातें हैं वो बड़ी सरल और सहज रूप में ही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिनकी बातों को हम धर्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जिन्हें हम जी रहे हैं, हम उनके जीवनियों को जाने? तो दोस्तों, एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि हमें कम से कम ईसा मसीह हैं, जो मोहम्मद साहब हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, गुरु नानक देव हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, इन सबके जीवनियों के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप इनकी जीवनियां पढ़ेंगे ना, तो इन्होंने जो बातें कही हैं उनके अर्थ आपके लिए बिल्कुल बदल जाएंगे, और वो जो बदले हुए अर्थ होंगे वो अभी के अर्थ से कम नहीं होंगे, इससे मत डरिएगा। उनके अर्थ और ज्यादा डायमेंशनल हो जाएंगे, ज्यादा चमकदार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कही गई बातों पर आपको यकीन ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि आप समझ सकेंगे तब कि नहीं, ये जो बातें कह रहे हैं, इन बातों को तो इन्होंने जिया है। जी हाँ, आपको ये लगेगा कि उन्होंने तो इन बातों को जिया है। तो कल्पना करके देखिए कि तब उनकी ही कही गई बातों पर हमारा भरोसा कितने गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब भरोसा ज्यादा बढ़ जाएगा तभी वे हमारे आस्था में और गहरे उतरेंगे, और आस्था बन जाने के बाद तो फिर वो हमारे आचरण में आ ही जाते हैं। इसलिए ये बात मैं जरूर कहूंगा। जैसे कि यदि मैं ईसा मसीह जी की पीड़ा के बारे में आप सबसे पूछूं कि आप बताइए कि उन्हें इस बात का क्या दर्द था कि उन्हें समझा नहीं गया, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग बता सकेंगे। हाँ, जो ईसाई धर्म के जो मानने वाले हैं वे शायद कुछ बता दें, कुछ पूरा नहीं, और उनमें से भी शायद कुछ ही बता पाएंगे, क्योंकि वहां भी मैंने देखा है, चाहे वो मोहम्मद साहब की जीवनी हो, चाहे ईसा जी की जीवनी हो, यहां तक कि राम और कृष्ण की सही मायने में जीवनियां हों, वो उससे वंचित है। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बस थोड़ी सी शुरुआत की बातें मालूम है, महावीर स्वामी के बारे में भी यही है, गुरु नानक देव के बारे में भी यही है। हम पूरी जीवनी के बारे में जानते ही नहीं, और आधी अधूरी जीवनियों को जानना, सही मायने में जीवनी को जानना नहीं होता है, वो तो गड़बड़ हो जाता है। तो ईसा मसीह में कैसे इस बात को लेकर के दर्द था, क्या दर्द था? दोस्तों, मैं उसी के बारे में आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। कल्पना करके देखिए कि ईसा मसीह जब काफी पॉपुलर हो गए तो अपने गाँव लौट करके गए, उनके गाँव वालों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। गाँव वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये आदमी ढोंगी है, ये आदमी बदमाश है, ये आदमी छली है, और उन पर पत्थर फेंके गए। बोले कि नहीं नहीं, ये जो चमत्कार करता है ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फालतू का आदमी, ये बड़ाई का आदमी क्या ऐसा कर सकेगा। कल्पना करके देखिए कि लोग उन्हें किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनकी झलक पाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जब वो अपने गांव जा रहे हैं, अपने गांव जहां वो पले हैं, बड़े हैं, सोच करके देखिए कि अपने गांव के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति हम सब में कितना भावनात्मक आवेश होता है। वो सोच करके जा रहे हैं कि मेरे गांव में मुझे प्रेम मिलेगा, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? दुत्कार मिलती है, घृणा मिलती है। क्या ये कम बड़ा दर्द है? सोच करके देखिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब ईसा मसीह को पकड़ने की घोषणा की गई कि आदमी तो यहाँ अनाचार फैला रहा है, तो मालूम है कि ईसा मसीह यहाँ है इसकी सूचना राजा को किसने दी थी? मालूम है आपको, इसकी सूचना उनके एक शिष्य ने दी थी, जो उनका बहुत परम प्रिय शिष्य था। सोच करके देखिए, जो लास्ट सपर जो पेंटिंग बनाई है विंची ने, लियोनार्डो द विंची ने, उसमें दिखाया है लास्ट सपर का मतलब यह है कि रात में वो अंतिम रात है उनकी, वो कि किस तरह से अपने शिष्यों के साथ बैठ करके वो भोजन कर रहे हैं। उसी में से एक शिष्य जाकर के चुपचाप राजा को बताता है कि ईसा मसीह यहाँ हैं। इसके बदले में उसको कुछ मुद्राएं मिल जाती हैं। एक शिष्य के द्वारा किया जाने वाला यह विश्वासघात क्या है? क्या यह ईसा मसीह की कम बड़ी पीड़ा होगी? यही है कि मुझे न समझे जाने की पीड़ा। दोस्तों वक्त नहीं है, नहीं तो मैं और भी कई इस तरह की बहुत ही मार्मिक घटनाएं बता सकता हूं जो ईसा मसीह के जीवन में घटी हैं। वो वास्तव में ईसा मसीह का दर्द था। दोस्तों इस पर हम लोग और भी आगे बात करेंगे। बेहतर होगा कि आप सब भी अपने अपने अनुभव लिख करके मुझे भेजें। यदि आप भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं तो इस विषय में और ज्यादा जीवंतता आ सकेगी, व्यावहारिकता आ सकेगी। तो अब आज के अपने इस विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।